थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की दूसरी पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है मसीह की आज्ञा। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओं, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन श्रोता मित्रों का जो पत्र के माध्यम से और फोन के माध्यम से अपनी गवाही और प्रार्थना के निवेदन हम तक पहुंचाते हैं। मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर के वचन में से आशीष पाकर हमें अवश्य पत्र लिखेंगे और फोन के द्वारा बातचीत करेंगे। मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका जीवित वचन उनके हृदय से बोलने पाए, बातचीत करने पाए, उनके जीवन को स्पर्श करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो इस समय निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, बीमारी में हैं। आप उन्हें छुएं, उन्हें आशीषित करें। आज के वचन के द्वारा आप उन्हें हिम्मत और धैर्य दें। आज के वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना अपनी पहली पत्री में प्रेम और दूसरी पत्री में सत्य को विषय बनाकर हम तक पहुंचाता है। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना अपनी पहली पत्री में प्रेम को मुख्य विषय बनाकर भाइयों से प्रेम करने का आदेश देता है, परंतु उसके इस आदेश के कारण विश्वासी गण निस्वार्थ प्रेम के कारण झूठे शिक्षकों को भी ग्रहण करने लगते हैं और उनकी शिक्षाओं से भ्रमित होते हैं। ये झूठे शिक्षक विश्वासी का रूप धारण करके उनके मध्य आ गए थे और उन्हें भरमा रहे थे, उन्हें सत्य से पथ भ्रष्ट कर रहे थे। अतः यूहन्ना लिखता है कि भरमाने वाला मसीह का विरोधी है, जो यह नहीं मानता कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। वह जो कोई मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो ऐसी शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न ही उसे नमस्कार करो। तो मेरे मित्रों, दूसरा यूहन्ना की पत्री में हम इसी बात को देख रहे हैं। यूहन्ना की दूसरी पत्री का संदेश अति आवश्यक है कि उसकी पहली पत्री का विचार समझने में आसानी हो। यहां वह मसीही जीवन के केंद्र के विषय चर्चा करता है, सत्य और प्रेम। वह एक प्रश्न का उत्तर देता है, यदि प्रेम और सत्य आमने सामने हो तो आप किसे अपनाएंगे। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं सत्य की सीमा में प्रेम की अभिव्यक्ति। दूसरा यूहन्ना की पत्री एक अध्याय, आपको पता है कि इसमें सिर्फ एक ही अध्याय है। एक अध्याय के एक पद में लिखा है, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। यूहन्ना की दूसरी पत्री एक व्यक्तिगत पत्र है जो उस प्राचीन द्वारा उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम है। प्राचीन शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, आयु में बड़ा या कलीसिया का शिक्षक या सेवक। मेरे विचार में यूहन्ना स्वयं को कलीसिया का सेवक कह रहा है और मेरे विचार में वह अपनी वृद्धावस्था को भी मान करके चल रहा है, क्योंकि इस पत्र को लिखते समय वह लगभग 100 वर्ष की आयु का हो चुका था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यूहन्ना अपने आप को प्रेरित नहीं कह रहा है। इसका कारण स्पष्ट है कि पाठक उसके प्रेरित होने के अधिकार को स्वीकार करते हैं, अतः वह स्वयं को प्राचीन कहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम। चुनी हुई महिला कोई स्त्री हो सकती है और उसके बच्चे। दूसरी ओर यह कलीसिया और कलीसिया के सदस्य भी हो सकते हैं। मैं इसे कलीसिया मानता हूं, आरंभिक कलीसिया और आज की कलीसिया। जी हाँ, कलीसिया से मेरा अभिप्राय कोई एक स्थानीय कलीसिया नहीं, परंतु प्रभु यीशु में विश्वासियों की देह है। यह पत्री युगों से कलीसिया के लिए अत्यधिक अर्थपूर्ण रही है और इसका संदेश कलीसियाई जीवन में फलदायी रहा है। मेरे विचार में हमारी कलीसियाएं प्रेम को महत्व देती हैं, इसलिए हमें इस पत्री की आवश्यकता है कि हम प्रेम के उचित अर्थ को समझें। लिखा है, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। इस पत्री में सत्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है और जैसा मैं प्रस्तावना में कह चुका हूं, यह इस पत्री का मुख्य शब्द है। मसीही प्रेम केवल परमेश्वर के परिवार में ही व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात उनमें जिनके पास सत्य है। यहां सत्य परमेश्वर का वचन और उसके द्वारा प्रकट प्रभु यीशु है, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। यहां यूहन्ना के कहने के दो अर्थ निकलते हैं। पहला, जिससे वह प्रेम करता है वह एक सच्चा विश्वासी है, और दूसरा, वह जो कह रहा है वह मात्र शब्द नहीं मन की सच्चाई है। तब वह आगे लिखता है, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं, अर्थात विश्वासियों की संपूर्ण देह। वे सब इस कलीसिया को या इस विशिष्ट महिला को प्रेम करते हैं क्योंकि वे सत्य को जानते हैं। दूसरा यूहन्ना उसके एक अध्याय के दो पद में लिखा है, वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। यहां पर लिखा है, वह सत्य। हमें परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को पहचानना और उसमें बने रहना है। बहुत से शिक्षक वचन की सीधी सीधी शिक्षा नहीं देते, वे बड़ी चतुराई से शब्दों का जाल बुनते हैं। मैं शब्द जाल में विश्वास करता हूं, परंतु सत्य का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति आसानी से इसे समझ जाए। मेरे मित्रों, मुझे किसी विद्यार्थी ने बताया कि उसका शिक्षक किसी शिक्षा में विश्वास नहीं करता है, अतः मैंने अपने प्रचार में उसका संदर्भ दे दिया। वह मुझसे अति अप्रसन्न हुआ। मैंने उससे कहा, यदि आप अपना विश्वास स्पष्ट लिखकर भेज दें तो मैं उसे पढ़कर अति प्रसन्न होऊंगा और क्षमा याचना भी करूंगा। इसकी अपेक्षा उसने लिखा कि वह मुझसे रुष्ट है कि मैंने कहा कि वह इस शिक्षा को नहीं मानता है। मैंने उसे फिर पत्र लिखा, आपको बस इतना ही लिखना है कि आपका विश्वास क्या है, और मैंने पत्र के अंत में लिखा, मैं डैश मानता हूं और मैं फिर से डैश अर्थात खाली जगह नहीं मानता हूं। उसे इसमें भरना था। मैंने उसके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया कि वह उसे भर करके मुझे भेज दे। इस पत्र के उत्तर में मैंने उसका आक्रोश भरा पत्र प्राप्त किया, अतः मैंने उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि वह उस शिक्षा में विश्वास नहीं करता था। इस कारण उसने मेरे पत्र के रिक्त स्थान को नहीं भरा था। उसने अपने अविश्वास को ढांकने का प्रयास किया था। जी हां, मैं किसी के विश्वास को झूठा नहीं कहता हूं, वरन मैं उसका सम्मान करता हूं। परंतु मैं उस बात का सम्मान नहीं करता कि कोई अपने विश्वास को स्पष्ट न करे। लिखा है, वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सत्य हमारे साथ सदा रहेगा। आज जब आप राजनेताओं पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, कॉलेज के शिक्षकों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, सेना के अगुओं पर भी आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, प्रशासन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, ऐसे में एक विश्वास योग्य मनुष्य होना बहुत ही अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह, जी हां, सत्य जो हम में स्थिर रहता है, हम में अंतर्वासी पवित्र आत्मा हम पर सत्य को प्रकट करता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। सत्य कभी नहीं बदलता है। किसी ने कहा है, जो सत्य है वह नया नहीं और नया सत्य नहीं। अधिकांश गोलमोल बातें लोग सुनाते हैं जिसमें सत्यता नहीं होती है। मेरे प्रियो, पद 3 का अभिवादन पौलुस, पत्रस और याकूब वरन यहोना के अभिवादनों से भिन्न है। आइए हम पढ़ें, दूसरा यहोना के पत्री 1 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। यहां 3 शब्द ऐसे हैं जिनके विषय में स्पष्ट समझ होना आवश्यक है। वे हैं तो एक, लगभग एक से ही, परंतु उनमें अंतर हैं। यूहन्ना अपने अभिवादन में यहां दया शब्द का प्रयोग करता है। अनुग्रह और दया और शांति, परमेश्वर के अनुग्रह और दया और शांति में क्या अंतर है? इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। जी हां, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह एक महान बाइबल अंश है क्योंकि इसमें तीनों बातें एक साथ हैं। पौलुस कहता है, परमेश्वर दया का धनी है और हमारे लिए महान प्रेम के कारण वह अपने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर प्रेम है। इससे पूर्व कि उसने सृष्टि की रचना की, वह प्रेम था। अब आप पूछेंगे, तब वह किससे प्रेम करता था? जी हां, उस समय त्रिएकत्व था और हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर में प्रेम था। डॉक्टर लुइस सोरी शाफर ने लिखा है, परमेश्वर का प्रेम वह है जो उसकी दया और उसके अनुग्रह की अभिव्यक्ति से पूर्व था। प्रेम परमेश्वर का गुण वरन स्वभाव है। परमेश्वर प्रेम है, परंतु रोचक बात तो यह है कि उसका प्रेम मनुष्य के उद्धार का कारण नहीं है। परमेश्वर के प्रेम ने उसे अनुग्रह और दया प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। प्रेम ने परमेश्वर को विवश किया कि वह अनुग्रह और दया दर्शाए। मेरे मित्रों, अब यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है, दया और अनुग्रह में क्या अंतर है? डॉक्टर शॉफर अति स्पष्ट कहते हैं, परमेश्वर की दया यह है कि उसने पापी मनुष्य की आवश्यकता के लिए व्यवस्था की। परमेश्वर दया का धनी है। वह दया का धनी क्यों है? क्योंकि वह प्रेम है, और क्योंकि वह प्रेम है इसलिए उसने दया से भरकर पापी मनुष्य के लिए व्यवस्था की। परंतु दया से मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ। जी हाँ, तब आगे डॉक्टर सॉफर कहते हैं, उसका अनुग्रह यह है कि वह मनुष्य के उद्धार के लिए स्वतंत्रता से कार्य करता है, क्योंकि पवित्रता की अनिवार्यताएं पूरी की जा चुकी हैं। जी हाँ, आज परमेश्वर अनुग्रह में कार्य करने हेतु स्वतंत्र है। आप एक पापी हैं जो परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। अनुग्रह का अर्थ है कि परमेश्वर पापियों के पास आकर के कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं दया का धनी हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैंने अपनी दया में तेरे लिए एक उद्धार करता दिया है। जी हाँ, अब यदि आप उसमें विश्वास करें तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से आपका उद्धार हुआ है और यह परमेश्वर का दान है, जिसे हम इफिसियों की पत्री 2:8 में पढ़ते हैं। इस सूक्ष्म अंतर को कोई भी कह सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अंतर निरंतर है। उद्धार परमेश्वर के प्रेम से प्रफुल्लित है, परंतु परमेश्वर प्रेम और दया के द्वारा उद्धार नहीं करता है। हमारा परमेश्वर पवित्र है और यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण उद्धार नहीं किया, परंतु एक उद्धारकर्ता हमें दे दिया और जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह उसकी दया थी, अब वह अनुग्रह के द्वारा उद्धार कर सकता है। मेरे मित्रों, यहां एक और एक बात है, उद्धार परमेश्वर के प्रेम की ही नहीं, उसके न्याय एवं धार्मिकता की अभिव्यक्ति भी है। अतः हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 रोमियो की पत्री 3:26 की भी आवश्यकता है। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसको भी धर्मी ठहराने वाला हो। मसीह में विश्वास करने पर आपको धर्मी ठहराने के लिए परमेश्वर को धर्मी, पवित्र और खरा होना है। वह आपको अंधेरे में स्वर्ग के पिछले द्वार से चुपचाप भीतर नहीं लेगा। हम स्वर्ग के योग्य नहीं हैं। जी हाँ, हम परमेश्वर से अलग हैं। उसके साथ हमारी सहभागिता नहीं है। उसके साथ सहभागिता अदन की वाटिका में ही टूट गई थी, जिसे उसने पुनः स्थापित किया, क्योंकि उसे धर्मी एवं न्याय सम्मत होना है। उसकी दया से एक उद्धारकर्ता दिया गया, क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया है। वह धर्मी होकर भी ऐसा कर सकता है, जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसको भी धर्मी ठहराने वाला हो। मेरे मित्रों, यही कारण है कि यूहन्ना लिख पाया, अनुग्रह हमारे साथ हो। परमेश्वर आपको इसी प्रकार बचाता है, दया से उद्धारक मिला है। शांति, जब आपको यह सब मिले तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, आपके मन में, आपके जीवन में स्थिर रहेगी। यूहन्ना कहता है, वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर इन महान सत्यों को कभी नहीं बदलेगा। वह सार्वजनिक विचार के साथ नहीं चलता है। एक किसान के खेत में एक दिशा सूचक तीर लगा था, जो हवा के प्रवाह को प्रकट करता था। उस पर उसने लिखा था, परमेश्वर प्रेम है। वहां एक प्रचारक आया तो उसे देखकर उसने उस किसान से पूछा, क्या परमेश्वर का प्रेम हवा के साथ बदल जाता है? उस किसान ने उत्तर दिया, नहीं, इसका अर्थ है कि हवा किसी भी दिशा में बहे, परमेश्वर प्रेम ही बना रहता है। जी हाँ, यह सच है। हमारा परमेश्वर प्रेम है और प्रेम से प्रेरित उसने हमारे लिए उद्धार उपलब्ध कराया है। कहता है, परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। प्रभु यीशु जो आपके लिए मरा, वह पिता का पुत्र है। त्रिएकत्व में यह उसका स्थान है। लिखा है, सत्य और प्रेम सहित। मेरे प्रियो, स्मरण रखें कि प्रेम सत्य के परिप्रेक्ष्य में ही किया गया है। कुछ लोग मुझे लिखते हैं, आप अपनी शिक्षाओं में अति सिद्धांतवादी हैं। मैं उनके पत्रों को सराहता हूं, क्योंकि मुझे स्वयं विश्वास नहीं होता कि मैं ऐसा हूं। मैं अपनी दिनचर्या के विषय अति स्पष्ट नहीं हूं, परंतु बाइबल शिक्षा में मैं अति स्पष्ट होना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर की सत्यता सब तक पहुंचनी चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, आज आप किस प्रकार की सत्यता में हैं? आपका विश्वास किस प्रकार का है? आपकी दिनचर्या क्या है? हमें इसे जानने की आवश्यकता है कि हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा से हुआ है, न कि हमारे परिश्रम के द्वारा से। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सब प्रभु की संगति में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।
चार